मैं विश्वास करता हूं कि आज हमारी कलीसिया की खास जरूरत है कि वे हर एक मसीह सदस्य को सेवक होने के लिए तैयार करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो मैं विश्वास करता हूं कि हमारी कलीसियाएं मजबूत बनकर आगे बढ़ती जाएगी। दुख की बात है कि बहुत कलीसियाएं केवल आराधना करके अपने घर वापस लौट जाती हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं करती हैं। तब आप कैसे सदस्यों को सेवा में बदल सकते हैं? आप कैसे सुनने वालों को परमेश्वर की सेना में बदल सकते हैं? सबसे पहले आपको यह सत्य सीखना है कि हर एक सदस्य की एक सेवा है। रोमियो 12 अध्याय में बाइबल बताती है कि हर एक मसीही एक सेवक है। हर एक मसीही सेवा का एक नियुक्त समय है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर एक मसीही पास्टर है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि मसीह देह में हमारी कोई सेवा का स्थान नहीं है। मसीही होने का अर्थ सेवक होना है। यीशु ने कहा, मैं सेवा करने और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने आया हूँ। और यदि हम मसीही की समानता में बनना चाहते हैं, तो हमें देना और सेवा करना सीखना होगा, जैसा यीशु ने किया। परमेश्वर की सेवा में स्वयंसेवक नहीं होते। मसीह की सेवा में होना वैकल्पिक नहीं है। यदि आप मसीह हैं, तो परमेश्वर आपसे यह आशा करता है कि आप यीशु के नाम में लोगों की सेवा करें। बाइबल बताती है कि हर एक सेवा महत्वपूर्ण है। प्रायः हम सोचते हैं कि जो लोग कलीसिया में मसीही शिक्षा देते हैं, वे ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन वह सच नहीं है। सत्य यह है कि मसीह के देह को हर एक अंग की आवश्यकता है। हाथ पैर से नहीं कह सकता मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, और कान आंख से नहीं कह सकता मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। हम सब एक दूसरे पर निर्भर है और हमें एक दूसरे की जरूरत है, ताकि परमेश्वर जो कलीसिया के द्वारा करवाना चाहता है वह पूरा हो सके। अब हमें कैसे पता चले कि मुझे कौन सी सेवा करनी है? ठीक है, आपको लोगों को यह सिखाना है कि परमेश्वर ने उनको विभिन्न सेवा करने के लिए बनाया है। उसके 5 कारण है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें प्रभावशाली सेवा के लिए बनाया है या सृजा है। यह 5 कारण इस प्रकार से हैं। पहली चीज जो परमेश्वर आपको सेवा के लिए बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, वह आत्मिक वरदान है जो वह आपको देता है। जिस पल आप विश्वासी बनते हैं, आपको कुछ आत्मिक वरदान दिए जाते हैं। इन वरदानों का वर्णन रोमियो, एफिसियों और कुरिन्थियों की पुस्तक में किया गया है। बाइबल बताती है कि किसी को शिक्षा देने का, किसी को बुद्धि का, किसी को सहायता करने का और किसी को प्रोत्साहित करने का वरदान मिला है। अतः हम लोगों को उनके आत्मिक वरदानों को पहचानने में सहायता करना चाहते हैं, ताकि यदि आपको शिक्षक बनने का वरदान मिला है तो मसीह की देह में शिक्षक बने। यदि आपको अगुवे बनने का वरदान मिला है तो आप मसीह की देह में अगुवे बने। लेकिन केवल वरदान ही नहीं है जो आपको दिए गए हैं। बाइबल बताती है कि आपको अलग प्रकार के दिल की धड़कन दी गई है, और वह आपकी रुचि है जिसे आप करना पसंद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कुछ काम बड़ी रुचि के साथ करते हैं क्योंकि आप केवल उन्हें करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे काम है जिनमें आपकी रुचि नहीं है और आप उन्हें करना नहीं चाहते? कुछ ऐसे काम है जिनको करने से आप बहुत उत्तेजित और आनंदित होते हैं, और दूसरी और ऐसा भी कुछ काम है जिनको आपकी रुचि बिल्कुल ही नहीं है। अब क्या सोचते हैं, ये कहाँ से आती है? ये बातें परमेश्वर की ओर से आती है। परमेश्वर ने हम में से हर एक को भिन्न प्रकार के दिल की धड़कन दी है, भौतिक और गतिशील दोनों प्रकार की। क्या आपको मालूम है कि हर एक इंसान के दिल की धड़कन भिन्न होती है, एक भिन्न तरीका होता है? ठीक उसी तरह से जिसे आपके अंगूठे का चिन्ह होता है, आपका पैर का निशान भिन्न होता है, वैसे ही आपके दिल की धड़कन भी होती है। परमेश्वर आपको भिन्न प्रकार की भावना में धड़कन देता है, इसलिए कुछ बातें आप पसंद करते हैं जिन्हें और लोग पसंद नहीं करते, और उसी प्रकार अन्य लोग कुछ बातें पसंद करते हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते। परमेश्वर ने हर एक को विभिन्न रुचियां दी है, ताकि संसार में जो काम होने हैं वह किए जा सके। अब उदाहरण के लिए, मुझे शिक्षा करने का वरदान मिला है, लेकिन यह वरदान मेरे हृदय की इच्छा के द्वारा प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, यदि मुझे शिक्षा का वरदान प्राप्त है, परंतु यदि मेरा हृदय बच्चों की सेवा अथवा गरीबों की सहायता अथवा किशोरों के साथ काम करना पसंद करता है, ये सब बातें मेरे आत्मिक वरदान के प्रयोग पर प्रभाव डालेंगी। अतः परमेश्वर ने आपको वरदान दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही मनुष्य हृदय भी दिया है। तीसरी बात जो सेवा में आपकी योग्यताओं को खोजना है। परमेश्वर हमें स्वाभाविक योग्यता देता है। कुछ लोग जानवरों के साथ मती होते हैं, कुछ लोग मैकेनिकल बातों में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे मशीनों को एवं कारों को ठीक करना। कुछ लोग शब्दों में अच्छे होते हैं, वे ठीक रीति से सोचते अथवा बोलते हैं और लिख सकते हैं। कुछ लोग दूसरे लोगों के साथ काम करने में भले होते हैं, कुछ लोग सिद्धांतों को तोड़ने मरोड़ने में ठीक होते हैं, और कुछ लोग मजबूत विचारों के साथ कार्य करने में भले होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य के लिए भिन्न रीति से बनाया है, वह हमें भिन्न प्रकार की योग्यताएं देता है। कुछ लोग गिनतियों में ठीक होते हैं और वह उनके घटने और बढ़ने में निपुण होते हैं, और दूसरे लोग इस कार्य में उतने निपुण नहीं होते। आपको यह योग्यताएं इसलिए नहीं दी गई कि आप अपनी इच्छा में इनका प्रयोग करें, परंतु परमेश्वर ने आपको यह योग्यता दी है ठीक उसी प्रकार से जैसे अपने आप को आत्मिक वरदान और आपके मन की इच्छाओं को एक उद्देश्य के लिए दिया है, और वह उद्देश्य उसकी सेवा करना है। चौथी बात जो आपकी सेवा को निर्धारित करती है वह आपका व्यक्तित्व है। परमेश्वर हमें अलग अलग व्यक्तित्व देता है। कुछ लोगों का व्यक्तित्व बड़ा अच्छा होता है, वे समूहों में रहना और दूसरे बाहरी लोगों के ध्यान को आकर्षण करना पसंद करते हैं। दूसरे लोगों का व्यक्तित्व शर्मीला होता है, वह भीड़ से अपने आप को अलग रखते हैं और एक व्यक्ति से ही बात करना पसंद करते हैं। कुछ व्यक्ति एक ही कार्य को बार बार करते हैं, वह दिन रात एक ही तरीके से काम करना पसंद करते हैं। दूसरे लोग बदलाव को चाहते हैं। यह सारी बातें ठीक और गलत अथवा अच्छी और बुरी नहीं है। परमेश्वर ने आपको बनाया है। यह बात आपको जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर कलीसिया में आपसे क्या करवाना चाहता है। मसीह की देह में मेरा क्या स्थान होना चाहिए? मैं अपने आत्मिक वरदानों, अपनी इच्छाओं और उन कामों को देखता हूँ जिन्हें मैं पसंद करता हूँ। मैं अपनी स्वाभाविक योग्यताओं और अपने व्यक्तित्व को देखता हूँ। आखिर में आपको अपने अनुभवों को देखने की आवश्यकता है। आपका अनुभव कभी बेकार नहीं जाता। चार प्रकार के अनुभवों के द्वारा आप अपनी सेवा को निर्धारित कर सकते हैं कलीसिया में। परमेश्वर आपके शैक्षिक अनुभव को भी देखता है। मैं मात्र स्कूली शिक्षा के बारे में ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन सभी बातों के विषय में कह रहा हूँ जो अपने जीवन में आपने सीखी है। माता पिता से, रिश्तेदारों से, आंटी अंकल और भाई बहनों से सीखी है। यह बातें जो आपने मित्रों से सीखी है वह सब शैक्षिक अनुभव है। और तब परमेश्वर आपके व्यावसायिक कार्य, निपुणताएं आदि सब अनुभवों का प्रयोग करता है जो आपने अपने जीवन के वर्षों में विकसित किए हैं। तब परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार आपको बनाने के लिए आत्मिक अनुभवों को प्रयोग करता है ताकि आप प्रभावशील रूप से उसकी सेवा कर सके। आत्मिक अनुभव जैसे अपने समय को परमेश्वर के समक्ष अर्पित करना, शायद कुछ कलीसिया की सभाओं या एक कैंप या यादि में, यह एक पुस्तक हो सकती है जो आपने पढ़ी हो, या एक टेप हो सकता है जो आपने सुना हो, या एक सेमिनार हो, या किसी मसीह ने आपको एक वचन दिया हो। आत्मिक अनुभव आपके जीवन में मोड़ लाने वाले सिद्ध होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, परमेश्वर कष्टदायक अनुभवों का प्रयोग हमें ठीक करने के लिए करता है। क्या आपको मालूम है कि बाइबल दूसरी कुरिन्थियों में बताती है कि परमेश्वर जानबूझकर हमें समस्याओं, परीक्षाओं और कठिनाइयों में ले जाता है और हमारे दुखों में और कष्टों में सांत्वना देता है ताकि हम भी दूसरों की सांत्वना देने योग्य बन जाएं। परमेश्वर एक चोट के अनुभव को व्यर्थ नहीं ठहराता। इससे आप एक बात सीख सकते हैं कि कलीसिया में और संसार में आपकी सेवा ऐसी हो जो कष्टदायक अनुभव को देख सके जो आपके जीवन में आई है। उदाहरण के लिए, ऐसे माता पिता को कौन सांत्वना दे सकता है जो अपने बच्चे के मरने से दुखी है? केवल वे माता पिता जिनका बच्चा कभी गुजर गया हो। कैंसर के मरीज को और कौन अच्छी मदद कर सकता है जिसको स्वयं कभी कैंसर का रोग कभी नहीं हुआ हो? शराबी की उससे अच्छी मदद कोई नहीं कर सकता जो कभी शराबी रहा हो। पारिवारिक समस्याओं का समाधान उससे बढ़कर और कौन कर सकता है जो स्वयं उनमें से होकर गुजरा हो? मैं यह कहना चाह रहा हूं, जब आप अपने जीवन को देखें तो आपको अपने पुराने सभी कष्टदायक अनुभवों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर प्राय उन्हीं बातों को प्रयोग करता है दूसरे लोगों की सहायता और चंगाई के लिए जो आपको कष्ट पहुंचा चुके हैं। जब आप विश्वासियों को उनकी सेवा के विषय सिखाते हैं तो आपको यह सिखाना आवश्यक है कि परमेश्वर ने उन्हें भिन्न रूप से बनाया है अथवा सिखाया है। उनके वरदानों और व्यक्तित्व और योग्यताएं और हृदय और अनुभवों को प्रयोग करके ठीक वैसा ही व्यक्तित्व बनाना जो कलीसिया में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य कर सके। अब आप इनको कैसे सिखाते हैं? मेरा दूसरा सुझाव यह है कि आप मासिक कक्षा लगाकर यह सिखाएं कि वे कैसे अपने आत्मिक वरदानों को खोज सकते हैं, परमेश्वर ने आपको किस प्रकार सेवा के लिए बनाया है, और वे बातें जो हमने की है आप इन बातों को लगातार सिखाते रहे ताकि नए लोग आपकी कलीसिया में शामिल होकर अपनी विशेष सेवा को पहचान सके। सैडलबैक कलीसिया जहां मैं सेवा करता हूं, हम प्रतिमा सिखाते हैं और लोगों को इस बात को बताते हैं और बाइबल सत्य को सिखाते हैं कि प्रत्येक मसीही की एक सेवा है, और यह सेवा उस तथ्य पर आधारित है कि परमेश्वर ने उसे कैसे बनाया है। कक्षा के बाद एक पास्टर या अगुवा उस कक्षा के प्रत्येक सदस्यों से अलग अलग विचार विमर्श करके पूछेगा कि उन्होंने अपने जीवन और कलीसिया में उनकी स्थिति के विषय में क्या सीखा है। हम उनकी सेवा को विकसित करने में सहायता करते हैं। एक महिला एक बार मेरे पास आई और कहा, पास्टर रिक, मैं सोचती हूँ कि हमें प्रार्थना की सेवा की आवश्यकता है। मैंने कहा, क्या आपके पास सच में इस सेवा के लिए हृदय है? तब उसने कहा, जी है, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तब मैंने कहा, ठीक है, आप ही प्रार्थना की सेवा है। वो बोली, मैं? मैंने कहा, जी हाँ, क्यों नहीं? उसने कहा, मैंने केवल यह विचार सोचा था। तब मैंने कहा, यह सच है कि आपका विचार था, लेकिन हो सकता है कि परमेश्वर आपके हृदय में काम कर रहा हो और आप ही इसको शुरू करने वाली हो सकती है। इस प्रकार से हमारी प्रार्थना की सेवा आरंभ हुई। एक और समय एक महिला मेरे पास आई और बोली, पास्टर रिक, हमें एक सहायता समूह को आरंभ करने की आवश्यकता है उन लोगों के लिए जो कैंसर से पीड़ित है। मैंने कहा, यह बहुत अच्छा विचार है, क्यों ना आप ही इसे शुरू करें। वह बोली, देखिए, मैं अगुवा नहीं हूँ। मैंने कहा, क्या जाने, आप केवल शुरू करें, हम कलीसिया में इसकी घोषणा कर देंगे कि हम कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए एक नई सेवा शुरू कर रहे हैं। आप इसे संगठित करें और देखिए कि क्या होता है। इस प्रकार से यह सेवा संगठित हुई। एक बार एक आदमी आया और बोला, पास्टर रिक, आप जानते हैं कि मैं गा नहीं पाता हूं और नहीं बाइबल पढ़ पाता हूं और मैं बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, लेकिन उसने कहा, मैं अपने हाथों के कामों में अच्छा हूं, मैं वस्तुओं को बनाना चाहता हूं। उसने कहा, मैं एक मरम्मत की सेवा शुरू करना चाहता हूं और हम लोगों को सिखाएंगे कि वह अपने घरों और अपनी वस्तुओं की मरम्मत कैसे कर सकते हैं। यह एक चर्च की निःशुल्क सेवा होगी। और इस प्रकार से यह सेवा आरंभ हुई और आज इसे इस सेवा में बहुत से लोग हैं। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आकर बोला, मैं कार ठीक करने की सेवा शुरू करना चाहता हूं। वह बोला, मैं एक मैकेनिक हूं और कार ठीक करना जानता हूं। इस प्रकार से यह सेवा शुरू हुई। आज हमारी कलीसिया में 150 से भी अधिक सेवाएं हैं जो व्यक्तियों द्वारा शुरू की गई थी। यही अगली बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों को सृजनात्मक बनाने की अनुमति दें। जब भी उनको एक विचार मिलता है, आप उन्हें अनुमति दें कि वह सेवा शुरू करें। ऐसा न कहे, ओ, हम इसे शुरू नहीं कर सकेंगे कि मैं नहीं सोचता कि यह ठीक है, मैं ही पादरी हूँ। लोगों को विचार प्रस्तुत करने दीजिए और वह सृजनात्मक होंगे यदि आप उनको अनुमति दें। जैसे कि मैंने कहा, हमारी कलीसिया में 150 से भी अधिक सेवाएं हैं। अब हम लोगों को अनुमति देते हैं कि वह कक्षाएं और अपने वरदान के अनुसार अपने आप सेवा आरंभ कर दें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोगों को अनुमति दें कि वे अपनी सेवाओं को बदलें अथवा एक सेवा को छोड़कर दूसरी शुरू करें बिना किसी दुख के। वह ऐसा करना सीखे। कभी कभी कलीसिया में हम लोगों को सेवा करने के लिए कहते हैं, शायद बच्चों की सेवा या भोजन परोसने की सेवा। कुछ समय के बाद वह इस सेवा में थक जाते हैं और कुछ नया काम करना चाहते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं कि वह अपने गुण और वरदान इस सेवा में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कभी कभी उन्हें थोड़ा आराम चाहिए अथवा थोड़ी छुट्टी चाहिए। आपको उन्हें समय देना चाहिए कि वह स्वयं अनुभव करें। उनको सेवाएं आरंभ करनी चाहिए जब तक कि वह ठीक स्थान में न पहुंच जाए। आइए मैं आपको बताऊं कि ऐसा करना क्यों अच्छा है। यदि आप लोगों की सेवाएं, स्थान या कार्य लेने के लिए विवश करेंगे जिनके लिए वह आत्मिक रूप से तैयार नहीं है, तब आपको उन्हें लगातार प्रोत्साहित करके धक्के मारकर आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वह नहीं कर रहे हैं जो वह करना चाहते हैं। यदि आप उनके वरदान के अनुसार उनकी सेवा को खोजने में सहायता करेंगे जिसके लिए उन्हें गुण और आत्मिक वरदान प्राप्त है, तब आपको उन्हें लगातार प्रोत्साहित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे सेवा के आनंद से स्वयं ही प्रोत्साहित होते रहेंगे, क्योंकि वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर ने हर एक को संसार में विशेष कार्य के लिए बुलाया है, और जब हम उस कार्य को पहचानते हैं और अपने उद्देश्य की खोज करते हैं, सेवा और काम को खोजते हैं, तो यह अच्छा प्रतीत होता है। मुझे याद है, परमेश्वर ने मुझे शिक्षा की सेवा सौंपी थी। तब लोग मुझसे कहते थे कि पास्टर रिक, परमेश्वर आपको आशीष देता है जब आप प्रचार करते हैं। तब मुझे यह अच्छा लगता था और मैं समझ गया था कि परमेश्वर ने मुझे इस पृथ्वी पर इस सेवा के लिए रखा है। इससे मुझे जीवन का अर्थ प्राप्त हुआ। आज बहुत से लोगों के जीवन का कोई अर्थ और उद्देश्य नहीं है, क्योंकि उनको नहीं मालूम कि उनको किस लिए बनाया गया है। उन्होंने अपनी सेवा को नहीं पहचाना, संसार में अपने कार्य को नहीं पहचाना। इसलिए आप उन्हें अनुभव प्रदान करने का समय दें। भिन्न कार्यों को करने के द्वारा ही आप पता कर पाएंगे कि आप किस कार्य के योग्य हैं। जब मैंने अपना जीवन मसीह को दिया, तब मैंने सोचा था कि मैं एक संगीतकार बनकर आराधना में अगुवाई करूंगा। मुझे गाना पसंद है, लेकिन एक ही समस्या थी कि मेरा गाना कोई भी सुनना पसंद नहीं करता था। तभी मुझे पता चला कि मुझे संगीत का वरदान नहीं मिला है। लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, तो मुझे पता चल गया कि परमेश्वर ने मुझे इस क्षेत्र में आशीष दी है। बहुत से जीवन मेरे प्रचार के द्वारा बदल गए। जब मैंने ऐसा किया, तब मुझे पता चला कि परमेश्वर ने मुझे इस सेवा के लिए बुलाया है। जब हम लोगों की सेवा को खोजने के लिए उनकी कक्षाएं लेते हैं, तो एक उनसे कहते हैं कि इस सेवा के लिए कम से कम एक साल का वायदा करें। लेकिन हम कभी भी उनसे यह वायदा पूरा नहीं कर पाते। यदि साल के बीच में वह कहते हैं कि मेरा काम नहीं है और मुझे कुछ और करने की आवश्यकता है, तो हम उन्हें आनंद पूर्वक अनुमति देते हैं। तब वे भिन्न सेवाओं के द्वारा परमेश्वर की इच्छा खोज लेते हैं। यदि आप पास्टर लोग ऐसा करेंगे, तो आप देखेंगे कि न सिर्फ आपकी कलीसिया बढ़ती जाएगी, बल्कि आपका बोझ काफी हद तक हल्का हो जाएगा। आप सारा बोझ स्वयं ही नहीं उठाएंगे। जब मैंने सैडलबैक कलीसिया आरंभ की, तब मैंने सब कुछ अपने आप शुरू किया, क्योंकि वह केवल 7 लोगों का छोटा सा समूह था और मैं ही हर इतवार को यह कलीसिया लगाता था। मैं सभी कुर्सियां लगाता था, मैं ही कार्यक्रम लिखता, उपदेश तैयार करता और भवन की लाइट चलाता था। आराधना खत्म होने के बाद मैं ही लाइट बंद करता था और मैं झाड़ू लगाता था, कुर्सियां साफ करता था और मैं ही सभी काम स्वयं करता था। जैसे जैसे कलीसिया बढ़ती गई, मैं थकावट महसूस करने लगा, क्योंकि मैं सभी काम स्वयं करने का प्रयास करता था। जब लोग मेरे पास आते थे, तो आशा करते थे कि उनके सभी प्रश्नों का उत्तर मेरे पास हो। मैं अकेले ही प्रचार, शिक्षा, प्रार्थना, बपतिस्मा, परामर्श, मरीजों को देखना। जैसे जैसे कलीसिया बढ़ती गई, मेरी ऊर्जा खत्म होती गई। जब कलीसिया 400-500 लोगों की हो गई, मुझे याद है कि मैं कलीसिया छोड़ने वाला था, तब मैं बहुत हताश हो गया। मुझे याद है चर्च जाते समय और बुधवार की रात मैंने उनसे कहा, आप जानते हैं कि अब मैं यह बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। काम बहुत बड़ा है, क्योंकि चर्च बढ़ता जाता है और मैं व्यक्तिगत रूप से सभी की आवश्यकताएं पूरी करने का प्रयास कर रहा हूँ, जो मैं नहीं कर सकता। जब मैंने बाइबल पढ़ी, तो मुझे पता चला कि यह सब काम मुझे ही नहीं करने हैं। एफिसियों की पत्री में बाइबल बताती है कि पास्टर और शिक्षकों को चाहिए कि विश्वासियों और कलीसिया के सदस्यों को सेवा के कार्य के लिए तैयार करें। आप समझिए कि एक पादरी होने के नाते यह सब काम मेरे नहीं है। मेरा काम है कि मैं मसीहों को प्रशिक्षित करूं, ताकि वह अपनी सेवा को पूरा करे। चर्च का मतलब एक व्यक्ति की सेवा करना ही नहीं था, जहां पास्टर ही सब कामों को करता है और प्रत्येक की आवश्यकता की पूर्ति करता है, बल्कि मुझे दूसरे लोगों को उनकी सेवा को पहचानने की अनुमति देनी चाहिए। तब मैं थोड़ा हल्का होकर उस काम को कर सकता हूँ, जिस काम के लिए मुझे परमेश्वर ने बुलाया है। प्रेरितों के काम में हम पाते हैं, जहाँ चेलों ने कहा, हमारे लिए यह अच्छा नहीं है कि हम खिलाने पिलाने की सेवा में लगे। उन्होंने कहा, तुम लोग कुछ लोगों को चुन लो जो खिलाने पिलाने की सेवा में लगे, और हम प्रार्थना और वचन की सेवकाई में लगे रहे। उस रात मैंने उन लोगों से कहा, मैं तुम्हारे सामने एक बात रखता हूँ, यदि तुम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कलीसिया की सेवा करो, तब मैं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सेवा करूंगा, जो प्रार्थना, तैयारी, वचन की शिक्षा देने की सेवा उसने मुझे सौंपी है। यदि तुम सेवा का काम करोगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको आत्मिक भोजन खिलाता रहूंगा और हर सप्ताह आप यह जान लेंगे कि मैंने कष्ट उठाकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करके आपकी आत्मिक उन्नति के लिए आत्मिक संदेश तैयार किए हैं, क्योंकि तुम सेवा करोगे और मैं तुम्हें सेवा करने के लिए प्रशिक्षण दूंगा। उस रात लोगों ने कहा, यह ठीक बात है, हम राजी हैं। हमने आपस में हाथ मिलाए, प्रार्थना की और यहाँ तक कि एक वाचा बांधी। और जब हमने ऐसा किया, सैडलबैक चर्च उन्नति करने लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं अब इन सब कर्मों को नियंत्रित नहीं कर रहा था। मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। एक चर्च को बढ़ने के लिए दो बातें बहुत आवश्यक है। पास्टर को नियंत्रण करना छोड़ देना चाहिए और लोगों को भी नियंत्रण करना छोड़ देना चाहिए। पास्टर को इसलिए क्योंकि जब चर्च बढ़ता है तो वह अकेला सब कुछ नहीं कर सकता है, और लोगों को नेतृत्व का नियंत्रण छोड़ देना चाहिए। उनको पास्टर को अगुवाई और आत्मिक भोजन खिलाने की छूट देनी चाहिए। उसे परमेश्वर की भेड़ों की अगुवाई करना चाहिए और पास्टर को प्रत्येक सदस्य को अपनी सेवा करने की छूट देनी चाहिए। लेकिन जब मैंने ऐसा किया तो मुझे बहुत डर लगा। एक पादरी होने के नाते मैं डर गया कि यदि यह लोग हमारी कलीसिया में सेवा करेंगे तो बहुत सी गलतियां कर सकते हैं। और परमेश्वर ने मुझसे कहा, ठीक है रिक, क्या तुम गलतियां नहीं करते? और मैंने कहा, जी हाँ। परमेश्वर बोला, क्या इसी प्रकार तुमने नहीं सीखा? मैंने कहा, जी हाँ। उसने कहा, तब तुम दूसरे लोगों को क्यों नहीं सीखने देते? तुम दूसरे लोगों को आगे बढ़ने से रोक रहे हो। तुम लोगों को विश्वास भरने से रोक रहे हो, क्योंकि तुम उन्हें उन्नति नहीं करने दे रहे हो। तुम उन्हें सीखने नहीं दोगे। हम गलतियों के द्वारा ही सीखते हैं। और इसलिए मैं यहाँ यह कहना चाहूंगा पास्टर, कि अपनी कलीसिया में आप लोगों को गलतियां करने दे। सारी गलतियां खुद ही न करने की कोशिश करें। गलतियों को आपस में बांटे, क्योंकि इसी रीति से हम बढ़ते हैं और उन्नति करते हैं। यदि आपके पास कोई नया विचार लेकर आता है कि मेरे पास एक नई सेवा का विचार है, तो शायद आप उससे यह कहें, आइए इसे शुरू करने का प्रयास करें। हो सकता है कि यह न चले, लेकिन उनको यह मालूम हो जाना चाहिए कि इसके बजाय कि आप कहें, ओ यह नहीं चलेगा, आप उनको स्वयं करने दें, क्योंकि हम लोग इसी तरह से सीखते जाते हैं। यदि आप अपनी कलीसिया के सदस्यों को उन्नति कराना चाहते हैं, तो आपको लोगों को विश्वास करना सिखाना होगा। जितनी ज्यादा जिम्मेदारी आप लोगों को देंगे, उतना ही ज्यादा वह आपको प्रत्युत्तर देंगे। यदि आप उनके साथ बच्चों जैसा व्यवहार करेंगे तो वह कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन यदि आप उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देंगे और उनको स्वयं निर्णय लेने देंगे, उनको सेवा में गलतियां करने देंगे, तब आप देखेंगे कि न सिर्फ लोग ही उन्नति करते हैं, बल्कि कलीसिया उन्नति करती है। लोग सृजनात्मक बनेंगे यदि आप उनको छूट देंगे। कई बार हम नई सेवाओं को कलीसिया में शुरू होते देखते हुए डर जाते हैं, लेकिन कई बार इसी नई सेवा के द्वारा बहुत से लोग मसीह के पास आते हैं। इसलिए मैं आपको चुनौती देता हूं कि दूसरे लोगों को भी सेवा में भागीदार बनाएं और अपने प्राथमिक उद्देश्य सेवा को दूसरों को देने हेतु रखें। जैसा मैंने कहा, सैडलबैक कलीसिया आरंभ करते समय मैंने सब कुछ अपने आप किया, लेकिन मेरा हर साल का उद्देश्य अधिक से अधिक सेवा दूसरों को देने का रहा। और अब मैं कम से कम काम करता हूँ और दूसरे लोगों को अधिक से अधिक काम करने देता हूँ, और मैं परमेश्वर के वचन का अध्ययन और संदेशों को तैयार करने में अपना समय व्यतीत करता हूँ, जिससे लोग आत्मिक रीति से तृप्त होते हैं। अब यदि आप सेवा में लोगों की उन्नति एवं सहायता करना चाहते हैं, तो आपको सदैव उनके समक्ष दर्शन रखना चाहिए, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि हमारे जीवनों के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, और एक बड़े कार्य के लिए लोगों को नियुक्त करना आवश्यक है। परमेश्वर के राज्य के लिए लोगों को नियुक्त करना आवश्यक है। नहमा अध्याय 4 में एक कहानी है जिसे आप जानते हैं। यहाँ परमेश्वर ने नहमा से कहा कि तू जा और यरूशलेम की शहरपना को दोबारा से बना। यह कार्य बहुत कठिन था। नहमिया ने सब लोगों को संगठित करके इस कार्य में लगा दिया। बाइबल बताती है कि शहरपना आदि बनने तक लोग निराश हो गए। पूरी दीवार बनने में 52 दिन लगे, इसलिए आधी दीवार बनने अर्थात 25 या 26वें दिन लोग निराश हो गए। यह बात सामान्य है जो लोगों के साथ होती है। किसी काम को आधा करने तक हम निराश हो जाते हैं। क्या आप अपनी आधी दीवार की पुताई की है और बीच में ही थक गए हैं? क्या आप कभी पर्वत पर चढ़े हैं और आधे रास्ते में ही थक गए हैं? और क्या कभी लंबा रास्ता तय करने का इरादा किया है और आधे रास्ते में ही थक गए हैं? ठीक ऐसा ही नहेम्या के लोगों के साथ भी हुआ। दीवार आधी ही बन पाई थी कि लोग निरुत्साहित हो गए थे। नहेम्या ने क्या किया? वह निराश नहीं हुआ। उसने लोगों को वापस घर नहीं भेज दिया। उसने यह नहीं कहा कि यह काम नहीं हो पाएगा क्योंकि हम असफल हो गए हैं, इसलिए आइए काम छोड़ दें। लेकिन उसने एक नया दर्शन दिया और लोगों को चुनौती दी। उसने उनको प्रेरित किया। यही आपको अपनी कलीसिया में करना है। इसे मैं नहेम्या का सिद्धांत कहूंगा। इसका अर्थ यह है कि हर 26वें दिन दर्शन को लोगों को याद दिलाना। इसका अर्थ यह है कि प्रतिमा आपको लोगों को यह बताना है कि हम इसलिए यीशु की सेवा करते हैं, उसको प्यार करते हैं, अपना समय, पैसा और प्रचार करते हैं, क्योंकि जो आज हम कर रहे हैं वह अनंत काल तक याद किया जाएगा। एक बात जो मैं हमेशा अपनी कलीसिया को कहता हूं कि अपने आप को कलीसिया की सेवा में लगाए। जो कुछ आप प्रभु के लिए करेंगे वह हमेशा कायम रहेगा। वह आपके परिवार, आपका भविष्य, आपकी हर वस्तु को कायम रखेगा, क्योंकि जो कुछ हम करते हैं वह अनंत जीवन पर प्रभाव डालेगा। क्या आप कल्पना करते हैं कि स्वर्ग में आपसे कोई यह कहे कि महाशय, मैं स्वर्ग में केवल आपके कारण ही आया हूं? इससे बढ़कर और आनंद की बात नहीं कि आपने किसी व्यक्ति के जीवन को अनंत काल के लिए बदल दिया। जब आप अपने लोगों से बातचीत करते हैं तो उनको चुनौती दे कि वे मसीह सेवा में अपना योगदान दे, क्योंकि सेवा का कार्य उनके कार्य, उनके नौकरी से और अन्य बातों से बढ़कर है, क्योंकि यह सदैव स्थिर रहेगा। मैं एक कहानी के द्वारा इसको स्पष्ट करूंगा। कुछ वर्षों पहले मुझे सुनने को मिला कि मेरे चर्च का एक सदस्य बीमार था। उसके हृदय की सर्जरी की गई थी, इसलिए मैंने कहा कि मैं अस्पताल में उसे देखने जाऊंगा। इसलिए मैं उस व्यक्ति को अस्पताल देखने पहुंचा। प्रायः मैं अस्पताल किसी को देखने नहीं जाता हूं, क्योंकि हमारी कलीसिया बहुत बड़ी है और कई बार तो हमारे चर्च के सैकड़ों लोग एक ही सप्ताह में अस्पताल में बीमार हो जाते हैं। इसलिए दूसरे पास्टर और सहायक सेवकों का एक दल कलीसिया के लोगों से मिलता है, क्योंकि मैं इतने बड़े चर्च के लोगों से नहीं मिल सकता हूं। क्योंकि यह व्यक्ति हमारी कलीसिया का सबसे पुराना सदस्य था, इसलिए मैंने तय किया कि मैं उससे जाकर मिलूंगा। जब मैं आपसे मिलने गया तो मैंने देखा उसके शरीर में चारों तरफ मशीनें आदि लगी थी और वह अपने पलंग पर बैठा हुआ था। उसने मुझसे पूछा, पास्टर रिक, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने उसको बताया कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैंने उससे बातचीत की। शीघ्र ही मैंने पता किया कि मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारी कलीसिया के 5 सदस्यों का झुंड पिछले 24 घंटों में उनसे मुलाकात कर चुके हैं। जब मैं बाहर आया तो मेरी आंखों में आंसू थे और मैंने कहा, प्रभु बस, परमेश्वर ऐसी ही कलीसिया को चाहता है। वह कभी नहीं चाहता कि कलीसिया में एक ही आदमी पादरी ही हुए जो सबकी चिंता करे और सबसे मिलने जाए। 50 बार से अधिक बाइबल कहती है हमें एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे की चिंता करना, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, एक दूसरे की मदद करना और एक दूसरे के साथ बांटना और एक दूसरे के साथ प्रार्थना करना। मसीह की दे अपनी चिंता अपने आप करती है। यदि आप इस सिद्धांत को अपनी कलीसिया में अपनाएंगे और लोगों की सेवा को पहुंचाने में मदद करेंगे, तब आप जो पास्टर लगे हैं वे देखेंगे कि उनका काम बहुत सरल हो गया है और कलीसिया मजबूत होकर बढ़ती जाती है, क्योंकि परमेश्वर लोगों के जीवन में काम कर रहा है। अब अतः मैं एक विशेष प्रार्थना करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको बहुत से सेवकों को तैयार करने में इस्तेमाल करे, ताकि परमेश्वर के कार्य का बोझ बांट सके। स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करना चाहता हूं कि तूने कलीसिया को ऐसा बनाया कि वह एक ही व्यक्ति के द्वारा न चलाई जाए, परंतु प्रत्येक मसीही की आत्मिक उन्नति करके अपने आत्मिक वरदान के अनुसार सेवा को प्राप्त करे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग इस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं वे अपने आत्मिक वरदानों, इच्छाओं, योग्यताओं, व्यक्तित्व, अनुभव जो अपने उनको दिए हैं पहचान सके, और हम प्रार्थना करते हैं इसके फलस्वरूप बहुत बड़ी जागृति इस राष्ट्र में आने पाए। यीशु के नाम में आमीन।